सुबह तो हमने बहुत लंबी गुजारी, अब हम चलेंगे मुसलमान की दोपहर पे। सब खोल लीजिए ताकि एक ही साथ सबके सामने बुक्स हो। पेज 61 का बिल्कुल एंड है। वक्त की कदर कीजिए, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मुसलमान के रोज़ो शब। सुबह पढ़ ली, अब दोपहर। जवाल के वक्त मुअज्ज़िन जुहर की नमाज़ के लिए अज़ान देता है तो मुसलमान अदाए नमाज के लिए तेज़ी से लपकता है। इसकी ये कोशिश होती है कि नमाज़ अव्वल वक्त में अदा करे और जहाँ तक हो सके जमात के साथ अदा करे। लिखें पहली बात, हमारी दोपहरें जुहर की जमात के साथ होनी चाहिए, इसलिए कि अव्वल वक्त में अल्लाह की खुशनुदी है और अल्लाह ताला ने नेकियों में मुकाबले का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के घरों में आग लगाने का इरादा फरमा लिया जो अज़ान की आवाज़ सुनकर अपने घरों में बैठे रहते हैं और नमाज़े बाजमात में शामिल नहीं होते। ज़रा सा सोचें, और ये सही रिवायत है। आपने फरमाया कि मेरा दिल है कि मैं अपनी जगह किसी और को खड़ा करूं, यानी वो जमात करा ले, और मैं उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो अज़ान सुनते और अब नमाज़ के लिए नहीं आते। और नबी कौन थे? रहमतुल आलमीन। अल्लाह ताला कहते हैं, आप तो बड़े नरम है। फ़बीमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम। इतने नरम मिजाज शख्स की ज़बान से ये लफ्ज़ सुनकर क्या एहसास होता है कि आप कभी गवारा नहीं कर सकते, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है। पहले तो मस्जिद की अज़ान की आवाज़ किसी के घर में आती थी या नहीं आती थी, आज तो हमारे अपने घरों में अज़ानें चलती हैं। 10 फ़ोन हैं तो 10 दफ़ा जोहर की अज़ान की आवाज़ आएगी। कितने लोग हैं जो अज़ान सुनने के लिए मस्जिदों का रुख करते हैं कि हम नमाज से पहले ही पहुँच जाए। बहुत कुछ जो आज उम्मत से छुटता जा रहा है ना, उसमें एक जमात की नमाज़ भी है। आप कहेंगे ये तो मर्दों का काम है, शौहर नहीं सुनते, भाई नहीं मानते, बाप नहीं मानते, तो बच्चे तो आपके हाथ में हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमेशा इंसान को मौके देता है। चलो तुम कहती हो शौहर तुम्हारी नहीं सुनते, हालांकि झूठ है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो औरत ये कहे कि मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता। मैं ख़ुद भी औरत हूँ, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ शौहर मानते हैं। मर्द के मिजाज में औरत की बात मानना, याद रखिए। कुछ कमी बेशियाँ होती हैं, कुछ कहने सुनने में फ़र्क है, कुछ और वजूहत होती हैं, बज़ाहर वो नहीं मानते हुए लगते, लेकिन अगर अल्लाह से दुआ करके हिकमत के साथ मामला किया जाए तो काफ़ी आसूदगी होगी। लेकिन कम से कम आपके बच्चे तो आपके हाथ में। कुरान पढ़ने के बाद आपके दिल में कहाँ तक इस चीज़ की तड़प आई कि आपके बच्चे मस्जिद के नमाजी बने? और मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बताती हूँ कि मैंने बचपन से जो देखा था किरदार, पहले वो हमारे नाना अबू थे, क्योंकि दादा दादी को तो देखा ही नहीं, वो तो बहुत पहले चले गए। शऊर के साथ जिस शख्सियत को मस्जिदों की तरफ भागते जाते देखा, वो हमारे नाना अबू थे। ये भी अल्लाह की रहमत से ही होता है। हज, उमरा और मस्जिद की नमाज, ये बचपन से हमने देखा। गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, उनकी नमाज मस्जिद में, और हर साल हज उमरा। जब से हमने शऊर संभाला, सुनते हैं कि 27वां हज है कि 28वां था। लेकिन मैंने बाकी और लोगों में वो तड़प बहुत कम देखी, हालांकि माशाल्लाह बहुत सारे लोग नमाजी थे। और उसके बाद अल्लाह की रहमत और तौफीक से और अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, यही चीज़ मैंने अपने शौहर में देखी है। और मैं सोचती हूँ कि वो कैसी ख़वातीन हैं जिनके मर्द नमाज पढ़ते ही नहीं, ये तो खैर बात ही दूसरी है, मस्जिद तक नहीं जाते। ज़िंदगी की गाड़ी यानी शादी से लेकर, शौहर का जिक्र इसलिए किया कि शऊर के साथ देखूँ तो मैं इसको प्रैक्टिकली दिन रात देखती हूँ। शायद मैं कहती ये पुराने दौर की कहानी है, नाना अबू करते थे, अब नहीं मुश्किल है, आज के दौर में कैसे होगा, लेकिन आज का दौर मैं देखती हूँ कि इट्स क्वाइट पॉसिबल। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको पहले से प्लान करना पड़ता है। कहीं जाना है, पहले घड़ी देखेंगे, नहीं, अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, जा के आने में इतना टाइम नहीं है कि नमाज जाए। नमाज मस्जिद में, हमारे घर की घड़ी मस्जिद की नमाज के साथ चलती है, अल्लाह के हुक्म से। ये मुमकिन ही नहीं, इल्ला ये कि कोई मजबूरी में फंस जाए, सफ़र में, इंसान, बारिश में, आम हालात में ये मुमकिन ही नहीं कि नमाज का वक्त और मर्द घर हों। और इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या होता है? आई कैन प्रिडिक्ट कि इस वक्त वो कहाँ होंगे, या वो मस्जिद में है, या वो घर हैं, या जहाँ काम पे हैं वहाँ हैं। मैं तीसरी कोई जगह सोच नहीं सकती कभी-कभी सफ़र में, ट्रैवलिंग्स में रابطے नहीं होते, फ़ोन नहीं पास होते, उस मुल्क की सिम नहीं होती। मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि अगर ये वक्त है इस वक्त 15 मिनट में नमाज़ शुरू होने लिए, डेफ़िनेटली वो मस्जिद में होंगे, जाएँ ढूंढे मिल जाएंगे और वो वहीं होते हैं। तो अपने बच्चों का अदा डाले। तो जो बात सुनाने लगी थी, ये भी बात सुनाने से पहले वो ये थी कि मैंने इनको शादी के बाद पूछा था कि ये कैसे हुआ, और अमेरिका में रेस्ड है, बॉर्न पाकिस्तान के, रेस्ड अमेरिका में। 3 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको ऐसे मुल्क में भेज दिया जहाँ लोग बिगड़ जाते हैं। तो मैंने शादी के बाद जब इनको भाग भाग के देखा, सच्ची बात है बाकी भी पढ़ते थे घर के, लेकिन ये भाग नहीं थी जो मैंने इनमें देखी। तो मैं इनको पूछती थी ये कैसे, तो आप कहते आगे से क्या कहते हैं, मेरी माँ, यानी मेरी सास ने मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा एहसान किया होगा ना, वो ये है कि उन्होंने अपने बेटे को नमाज का आदी कर दिया। और मैं इनको कहती थी कि आप तो इस मुल्क में ऐसे हैं, देख के लगता ही नहीं आप इधर रहते हैं, किस चीज़ ने आपको बचाया? कहते थे मेरी नमाज ने, बचपन से, यानी जब से होश संभाला है नमाज की ऐसी आदत पड़ी कि गंदगी में भी रह कर देख लिया अल्लाह ने बचा दिया दामन, तो आप अपने बेटों को नमाजों का आदी करें, मर नहीं जाते आप, जाइए। मैं ऐसी बहुत प्यारी सिस्टर्स को जानती हूँ कई मुल्कों में, अब कुरान पढ़ा, सीना खुला, हामिले कुरान बने, अब क्या करें, मर से तो लड़ाई नहीं ले सकते, अपने बच्चों को लेके जाती हैं, बस पे जाती हैं जुमे की नमाज के लिए, बेटे दो जवान होते हुए 7, 8, 9 साल के बेटे, वो बच्ची है, वो साथ जाती है, बैठती है खुद भी, बेटे नमाज पढ़ते आते हैं, जितनी नमाजें वो दिन में बच्चे को लेकर मस्जिद में जा सकें लेके जाती हैं। देखिएगा ये दौड़ धूप ज़्यादा दिन नहीं होगी, बाप को भी ला जाएगी, क्योंकि बेटे और बीवी जाए और बाप घर में बैठा रहे ज़्यादा दिन नहीं बैठेगा। लेकिन जो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती वो माओं और औरतों की रिलैक्सेशन है, क्या करें फिर, यानी इट्स ओके, नैपकिन की तरह इस बात को सुनकर पीछे फेंकते हैं। यकीन करें मैं आपको सच कहूँ, अब आने वाले दौर में जो फितने आपके बच्चों के सरों पे मुसल्लत किए जा रहे हैं, ये नमाज ही है जो बचाएगी उनको। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ख्शाय वल मुनकर, फ़ुख्श और मुनकर से नमाज रोकती है। आप देखिए ना, इंसान कभी नापाकी की हालत में रह सकता है अगर नमाजी हो? जिस मुआशरे में, जिस गंदगी में पड़े हैं, कोई भी बुराई से बड़ी बुराई का तसव्वुर कर ले, अगर बच्चे को नमाज की आदत है वो उस गंदगी में जाएगा नहीं, क्योंकि मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। इसके लिए जो मर्जी करें, आपको इसके लिए खुद जागना पड़ेगा, याद रखिए पहले आपको पढ़नी पड़ेंगी। यकीन करें इंसानी ताल्लुकात की खराबी हमें नज़र आती है, लेकिन असल में उसके पीछे अल्लाह से ताल्लुक़ की कमी है। खुद से पूछे मेरी अपनी नमाज़ों का क्या हाल है, मैं जिस दिन से आई हूँ मेरा दिल करता है कि मौका मिले तो ज़रा सा बैठ के आपको नमाज़ पढ़ते देखूँ, सुनूँ आपकी नमाज, क्योंकि नमाज़ ठीक नहीं हुई तो बाकी क्या होगा ठीक। बुक्स तो पढ़ ली, लेकिन अब उसके ऊपर अमल भी है कि नहीं, और पढ़ ली सब तरीके आ गए, दुआएं पढ़ ली, तो अब पढ़ते कितनी है, किस वक्त पढ़ती हूँ, अपने आप से खुद सवाल पूछे, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी नमाजों का क्या हाल है, वक्त से पहले तैयार हूँ, वक्त पे पढ़ती हूँ या वक्त टाल के पढ़ती हूँ, नमाज के बगैर चैन आता है क्या, पिछले 2, 2.5, 3 सालों में मेरी कोई एक नमाज भी कज़ा हुई क्या, कोई एक रात भी ऐसी आई मेरी जिसमें मैं नमाज पढ़े बगैर सो गई, और मैं सो गई, अल्लाह की पनाह कब्र लगेगी आपको अपना बेड कि मैंने नहीं उठना इधर से क्योंकि मैं बगैर नमाज के सोई हुई हूँ। तो देखिए कि ये किताबों का सफ़र नहीं है, ये अमल का सफ़र है, अपना मुहासबा खुद कर, और इतना कड़ा मुहासबा करें अपना कि क्या कोई पुलिस मैन किसी का मुहासबा करता है, सजा दें। मैंने अपने हस्बैंड को देखा, कभी किसी वजह से अगर उनकी जमात की नमाज चली जाए ना फजर की, तो रोज़ा, भाई आज रोज़े का कौन सा दिन है, शुरू में नहीं समझ आती थी, पीर और जुमेरात तो समझ आता है, ये क्या है, मुंह से नहीं बोले, लेकिन मैंने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा कि जब फजर जिस दिन जमात से छुटी उस दिन रोज़े की नियत, नफिल रोज़ा, इसको तादीब कहते हैं, अदब सिखाना अपने नफ्स को। तो अगली दफ़ा तो नफ्स ने खुद ही कहना, उठो भाई पढ़ लो, नमाज पढ़नी आसान है या रोज़ा रखना। तो अपने बच्चों को इसकी आदत करें। अब आपकी सारी फालतू सरगर्मियाँ ख़त्म, बहुत कर लिया, बहुत खा लिया, पी लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, अब अपने बच्चों को टाइम दें, और बच्चों के बहाने आप खुद, और देखिए बच्चों से नमाज की प्रैक्टिस कराएं, और कुछ नहीं है ना। अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं, निकलना घर से मुश्किल, 7, 8 साल के बच्चे को बेहतरीन नमाज सिखाएं और वो जमात कराए और आप उसके पीछे पढ़ें, इस साल हमने जो चंद दिन ताक रातों में प्रोग्राम किया है, यही जो बुक आपको बताई थी, छोटे अमाल और बड़े सवाब, तो हमने उन रातों में वहाँ तरावी की नमाज का भी इख्तमाम किया था। तो कौन पढ़ाता था? एक बच्चा पढ़ाता था, हमारे अपने साथियों में से एक साथी हैं, तो उनके बच्चों ने पिछले 5-6 पारे हिफ्ज किए हमें, तो वो बच्चा हमें पिछले पारे सुना। इतना इसकी ज़्यादा खुशी हो रही होती थी कि हमारे से आधे कद का बच्चा आगे खड़ा है और हम सारी औरतें पीछे उससे नमाज़ पढ़ रही हैं। और औरतें कहती थी हमें उस पर रश्क आता है, तो मैं कहती थी रश्क आपके ऊपर भी आ सकता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो बच्चे इस्लामिक स्कूल में जा रहे हैं फुल टाइम, 600 यूरो वो कहती हैं हम पे करते हैं अपने बच्चों की 3 की फ़ीस, महदूद आमदनी में से बच्चों की फ़ीस दी है, और वहाँ से सीखा है उन्होंने, तलफ़्फ़ुज़ बड़ा खूबसूरत, अरबी एक्सेंट है, ज़ाहिर मेहनत करेंगे तो बच्चे पे असर तो आएगा ना। और वो बच्चे सो रहा होता था, दूसरा बच्चा जो साथ था वो 4 तरावी पढ़ के कई दफ़ा वहीं सो जाता था, क्योंकि 12 बजे सुबह उठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन आप बताइए, ये ज़ाया तो नहीं जाएंगी ना चीज़ें, ये फिर अब बच्चों के दिलों में ईमान और तकवा और मोहब्बत डालेंगी, तो पीछे लग जाएं अपनी नमाजों के। अल्लाह ताला मुझे सबसे ज़्यादा और आपको मेरे से ज़्यादा इसकी तौफीक अता फरमाए। नीस्त नमाज जमात की फजीलत तन्हा नमाज के मुकाबले में 27 गुना ज़्यादा है। ज़रा से इसको एक लम्हे के लिए फिगर आउट करें, बाय वन गेट 26 फ्री, कितनी पकड़ेंगे हम? एक चीज़ जो आपको आम हालात में 10 की 1 मिलती थी, और आज 1 घंटे के लिए 10 की 1 ले लें तो 26-7 फ्री। मेरा ले उधार करके दूसरों को बुला के पैसे ले दे के हम कहेंगे जितनी भी ले लें, 26 तो बड़ी बात की बात है। हमें तो कोई मिडनाइट पिज़्ज़ा ऑफ़र कर देना कि आधी रात के बाद हाफ़ प्राइस है, तो हम बैठे रहेंगे हाफ़ प्राइस होने के इंतज़ार में कि हाफ़ होगा फिर लूँगी। हमारा तो ये हाल है, हम इंतज़ार करते रहते हैं चीज़ ज़रा सस्ती होगी फिर लेंगे। चलिए दुनिया के लिए तो समझ तो है, कभी इस पे गौर करें। और मैं अक्सर सोचती हूँ इस हदीस पे 27 क्यों? 1 2 3 गिनते जाएँ 27 कहाँ जाके जाता है, 27। फिर हम ना जमात से पढ़ें तो कितना अपना नुकसान करते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना, फिर ईमान और तकवा और अल्लाह की मोहब्बत और इखलास और पता नहीं क्या कुछ आता है। ऐसे ही ओवरनाइट आपके बच्चों ने इमाम सुदेस नहीं बन जाना, और आपके बच्चों ने दीन के बड़े आला मनसबों पर नहीं बैठना, इसके पीछे माँ की मेहनत है, माँ का शऊर है। मैंने नाम लिया तो मुझे याद आ गया इमाम सुदेस की कहानी। इनकी बहन से हमारी मुलाकात 2 दफ़ा हो चुकी है, एक दफ़ा सऊदी अरब में, एक दफ़ा पाकिस्तान वहीं। उन्होंने भी सुनाया था, कहती थी जब ये मेरा भाई तंग करता था ना माँ को, तो माँ इसको एक किस्म की दुआ देती थी बददुआ के रंग में कि अल्लाह तुझे इमाम काबा बनाए, और वो बात सच हो गई। तो बच्चों को ये दुआ ही दे दिया करे, अल्लाह तुझे काबा का इमाम बनाए, अल्लाह तुझे मस्जिद नबी का इमाम बनाए, अल्लाह तुझे मुत्तकियों का ईमान बनाए। और ये तो दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन व जअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और ये सारी बातें अगर बेटों के तनाजुर में कह रही हूँ तो सारी ही बातें बेटियों के लिए भी हैं, उसमें तो बल्कि और भी 4 चीज़ें मिल जाती हैं, और इज्जत, इस्मत, पहनावे। आप देखें कि ये मासूम बच्चे, मैं अक्सर सोचती हूँ कि अल्लाह ये ऐसे मासूम बच्चे क्यों देता है हमें, ना बोल सकते, ना साइड पलट सकते, ना भूख बता सकते, ना दर्द बता सकते, कि अल्लाह कहता है तुम अपनी मर्ज़ी से ढाल लो इसको, ये ना शिकवा करो कि ख़राब दिया था। तो जो बच्चा ख़राब है कहीं ना कहीं पीछे माँ की कोई गफलत तो होगी। मुसलमान दिन के वस्त में दोपहर का खाना खाता है, अल्लाह का दिया हुआ पाकीज़ा रिज़्क़ खाता है, ना इतना ज़्यादा खाता है कि तोंद निकल आए, और ना इतनी किफ़ायत शारी से काम लेता है कि एहसासे महरूमी होने लगे। देखें अपनी अपनी तोंद सारे, ये तो कोई नहीं देख सकता ना। और खाने के लिए बैठने का स्टाइल ही ऐसा है कि उसमें तोंद आगे ही निकलती है। आपको पता है कि जो मसनून तरीका है खाने का, आप उस पर बैठे ना तो आपका पेट अंदर दबता है, उस वक्त लगेगा पेट भर गया, तो जब खड़े होंगे तो क्या होगा, जगह बन जाएगी ना। हम जिस तरह डाइनिंग चेयर पे बैठ के खाते हैं वो पेट साफ तो भूल ही रहे होते हैं, तो जब खड़े होंगे तो दिल बोझल होगा ना। तो बहरहाल सुन्नत तरीके से बैठना वाकई एक बहुत बड़ी टिप है, किस चीज़ की? वेट को कंट्रोल में रखने की। और कुरान पाक में क्या आता है, ये जो रिवायत बताई थी आपको ऊपर, ये सारी रिवायतों के नंबर लिखे हैं, बुखारी की थी ऊपर जो घरों में आग लगाने वाली, और 27 नमाजों वाली जो रिवायत है ये भी बुखारी की है, और सूरत अल आराफ आयत 31-32 में आता है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ए बनी आदम हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो और खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ए नबी इनसे कहो, किसने अल्लाह की जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह की बख्शी हुई पाक चीज़ें ममनू कर दी। देखिए कितनी प्यारी आयत है, जिस तरह हराम को हलाल नहीं करना, इस तरह हलाल को हराम नहीं करना, साफ सुथरे बने। कुल्ली मस्जिद का लफ्ज़ है, और मस्जिद से मुराद यहाँ सजदे की जगह यानी नमाज है। क्या पता चला कि नमाज से पहले साफ सुथरे हो, गुसल करें, खुशबू लगाएं, साफ कपड़े पहने, कंघी करें, तरीके सलीके से बाहर निकलें, आपकी इबादत में भी खुशू और खुदू होगा। और इसी तरह से आप देखिए कि इसमें हद से बढ़ने की बात है, किसी रंग में भी हद से बढ़ना बेहतर नहीं है, चाहे आप तकवा में हद से बढ़ जाएं और या फिर दुनियादारी में। गर्म ममालिक में, वो भी ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में, कुछ लोगों को कैलूले की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा आराम करते हैं, इसके ज़रिए क़यामुल्लैल और बेदारी सहर में मदद हासिल करते हैं। इसी कैलूले की तरफ कुरान ने इन अल्फाज में इशारा किया है, सूरत नूर आयत 58, वहीन तदाउन सियाबकुम मिनज़्ज़हीरा, और दोपहर को जब तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी एक्स्ट्रा कपड़े, मोटे कपड़े उतार देते हो, हल्का फुल्का लिबास पहन लेते हो, तो कैलूला बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि ये मसनून भी है, पूरे यूएई में और अरब मुल्कों में दोपहर में छुट्टी होती है, मर्द घरों में आते हैं जोहर से लेकर असर के बीच में, खा पी के सोते हैं, फिर असर के बाद दोबारा दुकानें खुलती हैं। ये आपने देखा ही होगा जिनका भी कोई वहाँ रहता है। मैंने एक जगह पढ़ा, बल्कि शायद जापान की थी या चाइना की, एक पिक्चर्स भी शेयर की हुई थी, कि अब वो इस चीज़ के कायल हो गए हैं कि अपने लोगों से अगर काम ज़्यादा लेना है तो बीच में उनको थोड़ी देर एक शॉर्ट नैप लेने का मौका दें। उन्होंने आजमाया कि जब वर्कर सुबह से आए हुए 5 बजे तक कामों पर रहते हैं तो काम की क्वालिटी कम होती है। उन्होंने वहीं उनके डेस्क कुछ इस किस्म के बना दिए हैं कि जो एक ख़ास वक्त होता है सोने का, उस वक्त वो सारे उधर ही ऐसे ज़रा सा हल्का सो जाते हैं, कहते उसके बाद उनकी कारकर्दगी बढ़ जाती है। हमें अल्लाह के नबी की सुन्नत से ये चीज़ मिलती है। और ये जो आप लोग पूछ रहे थे अभी शुरू में कि रातें छोटी हैं और दिन में कैसे, उसका भी ये इलाज है, दिन में सो जाएं। नॉर्वे में अक्सर रमज़ान में, मुझे याद है पिछले साल मैं वहीं थी, तो अच्छा खासा हम सोते थे, तौरे कुरान करके आके या उससे पहले भी अच्छा 2-2.5 घंटे आप सो जाएं, फिर भी माशाल्लाह जोहर का टाइम तो कोई 5-6 घंटे रहता है। तो इसलिए दोपहर को सोएं, थोड़ी देर सोएं, उससे आप फ्रेश होंगे इंशाल्लाह। फिर असर का मौज़िन नमाज के लिए बुलाता है, तो मुसलमान अगर कैलूला कर रहा होता है तो कैलूले से, या अगर काम कर रहा होता है तो काम के हजूम से उठ खड़ा होता है, और नमाज असर के लिए जल्दी करता है, इसलिए कि ये नमाज इंतहाई अहम नमाज है। नमाज असर को क्या कहा गया कुरान में? सलातुल वुस्ता, बीच की नमाज। और एक देखिए हदीस नीचे भी लिखी हुई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरक सलात अल असरी फ़कद हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दी इसके अमल बर्बाद हो गए। बुखारी की रिवायत है। और एक और रिवायत देखिए, अल्लज़ी तफूतहु सलातुहुल असरी कअन्नमा वुतिरा लहू वमा लहू, जिसकी नमाज असर फौत हो गई इसका तो घर बार और माल लुट गया, सब कुछ ही लुट गया। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा। और आप देखिए, पूछिए खुद से, अपनी याददाश्त को पीछे लेकर जाएं, पिछले हफ्ते, महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कभी मेरी असर की नमाज गई, कज़ा हुई? क्योंकि यहाँ देखिए ना, छोड़ने की बात है, और जो नमाज़ें बाज़ारों में अक्सर जाती हैं वो कौन सी होती हैं? असर और मगरब ही होती है। अल्लाह हमें ऐसी शॉपिंगों से बचाए। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि खरीदो फरोख्त और खेल तमाशे इसे इस नमाज से गाफिल कर दें। औकात नमाज की पाबंदी करने वालों का जिक्र अल्लाह ताला अपनी किताब में इस तरह फरमाते हैं, रिजालुल्लातुल्हीहिम तिजारतुम वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काह खाफून यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती, वो इस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट फेर दी जाएंगी, उलट जाएंगी। आंखें पलटना क्या है? जब बंदा मरता है तो क्या होता है? और खौफ की वजह से ये जो पुतली होती है ना, ये ऊपर चढ़ जाती है, आंख का सफ़ेद हिस्सा सामने आता है। ये बात किसी मुसलमान के लिए जेबा नहीं कि वो सुस्ती बरतते हुए नमाज असर को टालता रहे, यहाँ तक कि सूरज डूबने के करीब हो जाए, इसलिए कि ये मुनाफिकों की नमाज है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, तिल का सलातुल मुनाफिक यजलिसु यरकुबु शम्स हत्ता इज़ा कानत बैन क़रनि शैतानी क़ाम फ़नक़रहा अरबान ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक की नमाज है, वो सूरज की टिकिया को देखता रहता है, यहाँ तक कि वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान पहुँच जाती है, तो वो उठता है और चार बार चोंच मार लेता है, चार रखते हैं ना सिर की, उसकी तरफ इशारा है, और इसमें अल्लाह का जिक्र बराए नाम करता है। तो क्या पता चला कि असर की नमाज को लेट नहीं करना, देर से नहीं पढ़नी, आप देखेंगे कि इससे भी इंसान के दिन की बरकत चली जाती है। और एक मज़े की बात आपको पता, हम जो नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं ना, तो हमें अगली नमाज से पहले काफ़ी वक्त मिल जाता है, आप आजमा के देखिएगा। और अगर पिछली नमाज ही लेट पढ़ें तो फिर हम अगली होगी तो कहेंगे हाय अभी तो पढ़ी थी, फिर कभी मौलवियों को बुरा कहते हैं कभी भला। आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं ना, तो काम करने के दौरान गैप्स तो लेने ही होते हैं ना, ना आप मुसलसल खाना पका सकते हैं, ना सफाई कर सकते हैं, ना कपड़े धो इस्त्री कर सकते हैं, नमाज़ों को गैप बना लें, आप देखेंगे इससे आपके वक्त में इंशाल्लाह बहुत सारी बरकत होगी। और कोई चीज़ जो मुसलमान की दोपहरों से मुतल्लिक आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। जी आप जी देखिए, पहली बात है कि अगर आप मुसलमान हैं किसी मुल्क जगह पे और आपके साथ और भी कुछ लोग हैं उस इलाके में, किसी घर के कमरे को, किसी छोटी सी शॉप को मस्जिद का नाम दे दें, जहाँ इज्तमाई इबादत हो जाए, अपने घर के ड्राइंग रूम को दे दें, ठीक है उसको मुसल्ला कह दें, मस्जिद ना कहें, लेकिन अहतमाम होना चाहिए। इस्लाम का मिजाज क्या है कि जहाँ चंद मुसलमान हैं ना, वो एक दूसरे को जानते हों, और वो कहाँ जानेंगे, मस्जिद में। आपके मेरे घर तो ऐसे खुल के कोई नहीं आता ना, हर वक्त कोई नहीं जा सकता, अल्लाह के घर मस्जिद ऐसी है जहाँ मुसाफिर भी आएंगे तो वो होगा, ये सबसे बेस्ट थिंग है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अपने घर वालों से कहें कि अपने बच्चे, यानी देखिए जितना इहतमाम करेंगे ना, कोई ऐसी चीज़ यानी दिन पूरे दिन में पांच में से कोई एक आधी नमाज फिर भी मस्जिद में पढ़ें, मगरिब ईशा, अपना मामूल इस तरह कर लीजिए कि जोहर असर घर में पढ़ लें, जमात करवा लें, फिर यही हो सकता है, लेकिन दूर में है जहाँ भी कम से कम एक आधी नमाज ज़रूर पढ़ें। और आप देखें जिस दिन आपको ये फ़िक्र लग गई ना, आपके बिल्कुल करीब ही कोई ना कोई जगह बन जाएगी। हम लोग अक्सर जगहों पे जाते हैं, ऐसे होता है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन पता चलता है वो फलां मस्जिद है, उसका बेसमेंट है, ढूंढें खुद देखें कुछ जगह है, कोई कम्यून की, कोई गवर्नमेंट से पूछें, कुछ भी है तो आपसे शायद अल्लाह ताला कोई बड़ा काम ले ले, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक साथ रह गया, इसको कर लेते हैं। अब सुबह भी हो गई, दोपहर भी हो गई, तो अब मुसलमान की शाम कैसे होनी चाहिए, 64 पेज है। सूरज डूबते ही मुसलमान मग़रिब की नमाज़ के लिए जल्दी करता है, ताकि अव्वल वक्त में इसको अदा करे, क्योंकि मग़रिब का वक्त बहुत तंग होता है, फ़र्ज़ और सुन्नत से फारिग होकर शाम के अज़कार मसनूना का विरद करता है, मसलन अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा इक़बालु लैलिका व इदबारु नहारिका व अस्वात दुआ अतिका फ़ग़फ़िरली, दोहराएं, क्योंकि ये दुआ हमारे कल्चर में आमतौर पर नहीं पढ़ी जाती, ये अबू दाऊद की रिवायत है 530 नंबर की, पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा इकबालु लैली का व इदबारु नहारी का व अस्वातु दुआ अतिका फ़ग़फ़िरली। ए अल्लाह, ये तेरी रात के आने और तेरे दिन के वापस जाने और तेरे पुकारने वालों की आवाज़ों का वक्त है, खुदाया तू मेरी बख्शिश फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, आप देखिए जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त की दुआ मांगी जाए तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। और सुबह की वो दुआएं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनका विर्द भी किया जाएगा, बस फ़र्क इतना है कि शाम को असबहना की जगह अम सही ना कहना चाहिए। इन अज़कार से फारिग होकर वो शाम का खाना खाता है, और इसका ये खाना औसत दर्जे का यानी मीडियम होता है, फिर इशा की नमाज़ पढ़ता है और वितर को मौखिर, मौखिर क्या, पोस्टपोन करता है, अगर वो बेदारी शब का आदी होता है, वरना सोने से पहले इसे अदा करता है। और वो कभी कभी अपने शाम के खाने को बाद नमाज ईशा तक मौखर कर देते हैं, मगर जब शाम का खाना और नमाज ईशा दोनों तैयार हो तो खाने को मुकद्दम करता है। मुकद्दम से मुराद के पहले खा लेता है, जैसा कि हदीस में आया है, ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है कि अगर ईशा और अशा इकट्ठा हो जाए तो फिर पहले खाना खा लो, क्योंकि ध्यान खाने में रहेगा। तो ये भी तुम्हारे दीन की खूबसूरती है। पर इसका ये नहीं मतलब कि ऐन ईशा की जमात के वक्त में अब खाना लगा दें दावतों में। और अक्सर हमारे अल्लाह हिदायत दे शादियों में, उधर मगरिब की अजान होती है उधर शादियों में खाना खुल जाता है। मुझे ये बात कभी नहीं समझ आई, दो दो घंटे से लोग बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन खाना ऐन नमाज से कुछ मिनट पहले खुलता है। अल्लाह ताला इस्लाह फरमा दे। तो बहरहाल दोनों में अगर क्लैश हो तो पहले खाना खा लें। ऐसा इसलिए है कि मुसलमान इस हाल में नमाज ना पढ़े कि इसका दिल मनाजात इलाही के अलावा किसी और चीज़ में मशगूल हो। सोने से पहले मुसलमान अपने बाज़ हकूक़ को अदा कर सकता है, मसलन किसी से मुलाकात करना या मिलने जुलने वाले लोगों के दरमियान बैठकर थोड़ी देर मेल मोहब्बत की बातें करना वगैरह। और मुसलमान के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि अपने रोज़ाना के अवकात में से एक हिस्सा पाबंदी से मुतालिया कुतुब के लिए मखसूस करे, ताकि इस किल में इजाफा होता रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल से फरमाया सूरत तौहा की आयत नंबर 114 कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे मज़ीद इल्म अता फरमा। इस नीयत से पढ़ लें इस वक्त कि अल्लाह हमें मज़ीद इल्म अता फरमाए। पढ़िए मिलके कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, तीन दफा पढ़ें सब मिलके। अमूमन लोग क्या कहते हैं, रब्बी ज़िदनी मालन, रब्बी ज़िदनी, अब आगे सारे लगा लें जो इल्म की जगह पे जमा करते हैं। तो ये दुआ भी मांगा करें, इससे इंशाल्लाह इल्म की तलब पैदा होगी। अपने मुताले के लिए इन कुतुब और रसाइल का इंतखाब करें जो इसकी दीनों दुनिया दोनों के लिए नफ़ा बख्शों। एक हकीम का कॉल है कि मुझे बताओ कि क्या पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कौन हो। इस तरह इसके लिए इसमें कोई हरज नहीं कि बाज़ मुबाह, मुबाह कहते हैं जायज़, खेलों और शरई तफरीहात के ज़रिए अपना जी बहलाए। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि ये चीज़ इबादत की राह में रुकावट ना बने और ना इनके सबब इसकी ज़ात और इसके अहले ख़ानदान के हकूक़ पामाल हों। इसीलिए मुसलमान के लिए ये बेहतर नहीं है कि वो रात में देर तक जागता रहे, यहाँ तक कि बास हकूक़ की अदायगी में कोताही होने लगे। अगरचे इसने ये काम जानबूझकर ना किया हो, तब भी ये मुसल्लिमा अमर है, यानी ये अप्रूव्ड है, ये प्रूवन फैक्ट है कि जब एक पहलू पर ज़्यादती होगी तो दूसरा पहलू लाजिमन तिशना रह जाएगा, यानी उसमें कमी होगी। और ऐसा करना अल्लाह के इस हुक्म के ख़िलाफ़ है जिसका जिक्र कुरान ने इन अल्फाज में किया, सूरत अर्रहमान आयत 7 और 8 में आता है, वस्समा अरफ अहा व बद अल मीज़ान अल्ला तत्गव फिल मीज़ान वाकीमुल वज़्न बिल क़िस्ती वला तुख़सिरुल मीज़ान। आसमान को इसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी, इसका तकाजा है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो। क्या पता चला, सुबह दोपहर और शाम, ये तीन अवकात ऐसे हैं कि जो एक इंसान के ख़ास तौर पे अल्लाह के हुक्मों से नबी सल्लम के फरामीन की रोशनी में गुजरने, फिर इसके बाद देखिए बाकी ज़िंदगी ठीक होगी कि नहीं। आप देखिए ना कि दिन में तीन दफ़ा आप केयरफुल हैं, मेरी सुबह कैसी है, मेरी दोपहर कैसी है, मेरा शाम कैसा है, तो क्या फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर नहीं डालेंगे। जब आप किसी चीज़ का सिरा पकड़ लेते हैं ना तो बाकी चीज़ें खुद हाथ में आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज यहाँ तक का जो टारगेट था पूरा हुआ, पेज 66 तक। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।